ये वो सबूत हैं जो मेरे मसीह माऊद और महदी माऊद होने पर खुले खुले दलालत करते हैं, और इसमें कुछ शक नहीं कि एक शख्स बशर्ते के मुत्तकी हो जिस वक्त इन तमाम दलाइल में गौर करेगा तो उस पर रोज़े रोशन की तरह खुल जाएगा कि मैं खुदा की तरफ से हूँ। इंसाफ से देखो कि मेरे दावे के वक्त किस कदर मेरी सच्चाई पर गवाह जमा हैं। नोट: मिन जुमला गवाहों के एक ये भी ज़बरदस्त गवाह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सबूत हर एक पहलू से इस ज़माने में पैदा हो गए हैं, यहाँ तक कि यह सबूत भी नहायत कवी और रोशन दलाइल से मिल गया कि आपकी कब्र श्रीनगर इलाका कश्मीर खान यार के महल्ले में है। याद रहे कि हमारे और हमारे मुखालिफों के सिद्क व कज़्ब आजमाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हयात है। अगर हज़रत ईसा दर हकीकत ज़िंदा हैं तो हमारे सब दावे झूठे और सब दलाइल हेच हैं, और अगर वो दर हकीकत कुरान की रूह से फौत शुदा हैं तो हमारे मुखालिफ बातिल पर हैं। अब कुरान दरमियान में है, इसको सोचो। मिनहु: इंसाफ से देखो कि मेरे दावे के वक्त किस कदर मेरी सच्चाई पर गवाह जमा हैं। नंबर एक, ज़मीन पर वो मफासिद मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की करीबन बेखुनी कर दी है। इस्लाम की अंदरूनी हालत ऐसी नाजुक हो रही है कि दीन मुतहर हज़ारहा बिदात के नीचे दब गया है। 1200 बरस में तो सिर्फ 73 फ़िरक़े इस्लाम के हो गए थे, लेकिन 13वीं सदी ने इस्लाम में वो बिदात और नए फ़िरक़े पैदा किए जो 1200 बरस में पैदा नहीं हुए थे, और इस्लाम पर बैरूनी हमले इस कदर ज़ोर शोर से हो रहे हैं कि वो लोग जो सिर्फ़ हालात मौजूदा से नतीजा निकालते हैं और आसमानी इरादों से नावाकिफ़ हैं, उन्होंने रायें ज़ाहिर कर दी कि अब इस्लाम का ख़ात्मा है। ऐसा आलीशान दीन जिसमें एक शख्स के मुर्तद होने से भी शोर क़यामत कौम में बरपा होता था, अब लाखों इंसान दीन से बाहर होते जाते हैं, और सदी का सर जिसकी नस्बत ये बशारत थी कि इसमें मफासिद मौजूदा की इसलाह के लिए कोई शख्स उम्मत में से मबूस होता रहेगा, अब मफासिद तो मौजूद हैं बल्कि नहायत तरक्की पर, मगर बकौल हमारे मुखालिफों के ऐसा शख्स कोई मबूस नहीं हुआ जो उन मफासिद की इसलाह करता जो ईमान को खाते जाते हैं। और सदी में से करीबन पाँचवा हिस्सा गुजर भी गया, गोया ऐसी ज़रूरत के वक्त में ये पेशगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खता गई, हालांकि यही वो सदी थी जिसमें इस्लाम गरीब था और सरासर आसमानी ताईद का मोहताज था, और यही वो सदी थी जिसके सर पर ऐसा शख्स मबूस होना चाहिए था जो ईसाई हमलों की मुदाफियत करता और सलीब पर फतह पाता, या बतब्दील अल्फाज यूँ कहो कि मसीह मऊद होकर आता और कसर सलीब करता। सो खुदा ने इस सदी पर यह तूफ़ान जलालत देखकर और इस कदर रूहानी मौतों का मुशाहिदा करके क्या इंतज़ाम किया? क्या कोई शख्स इस सदी के सर पर सलीबी मफासिद के तोड़ने के लिए पैदा हुआ? इसमें क्या शक है कि मरकज़ जलालत हिंदुस्तान था। नोट: अगर कोई अपने घर की चार दीवार से चंद रोज़ के लिए बाहर जाकर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा और बिलाद शाम वगैरह ममालिक इस्लामिया का सैर करे तो वो इस बात की गवाही देगा कि जिस कदर मुख्तलिफ मज़ाहिब का मजमूआ आजकल हमारा ये मुल्क हो रहा है और जिस कदर हर एक मज़हब के लोग दिन रात एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उसकी नज़ीर किसी मुल्क में मौजूद नहीं। मिनहु: क्योंकि इस मुल्क में सदहा मज़ाहिब फासदा और हज़ारहा बिदात मोहलिका जिनकी नज़ीर किसी मुल्क में नहीं पैदा हो गए, और आज़ादी ने जैसा कि बदी के लिए राह खोली ऐसा ही नेकी के लिए भी, लेकिन चूंकि बदी के मवाद बहुत जमा हो रहे थे इसलिए पहले पहल बदी को ही उस आज़ादी ने क़ुव्वत दी और ज़मीन में इस कदर खार व खस्क पैदा हुआ कि कदम रखने की जगह न रही। हर एक अकल जो साफ़ और पाक और रूहुल कुदस से मदद याफ्ता है वो समझ सकती है कि यही ज़माना मसीह मऊद के पैदा होने का था और यही सदी इस लायक थी कि इसमें वो ईसा इब्न मरियम मबूस होता जो ज़माना हाल की सलीब पर फतह पाता जो ईसाइयों के हाथ में है, जैसा कि गुज़श्ता ईसा इब्न मरियम ने उस सलीब पर फतह पाई थी जो यहूदियों के हाथ में था। अहदीस नबविया में इसी फतह को कसर सलीब के नाम से मौसूम किया गया है। फितना सलीबिया जिस मरतबे तक पहुँच चुका है वो एक ऐसा मरतबा है कि गैरत इलाही नहीं चाहती कि इससे बढ़कर उसकी तरक्की हो। इस पर यह दलील काफ़ी है कि जिस कमाल सैलाब तक इस वक्त ये फितना मौजूद है और जिन अनवा व अकसाम के पहलुओं से इस फितने ने दीन इस्लाम पर हमला किया है और जिस दलेरी और बेबाकी के हाथ से इज़्ज़त जनाब नबवी पर इस फितने ने हाथ डाला है اور جن کامل تدبیروں سے اطفاء نور اسلام کے لیے اس فتنے نے کام لیا ہے اس کی نظیر زمانے کی کسی تاریخ میں موجود نہیں، اور جن فتنوں کے وقت میں بنی اسرائیل میں نبی اور رسول آیا کرتے تھے یا اس امت میں مجدد ظاہر ہوتے تھے وہ تمام فتنے اس فتنے کے آگے کچھ بھی چیز نہیں۔ اور یہ امر ان امور محسوسہ بدیہیہ میں سے ہے جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تکذیب اور رد میں اس 13ویں صدی میں 20 کروڑ کے قریب کتاب اور رسالے تالیف ہو چکے ہیں اور ہر ایک گھر میں نصرانیت داخل ہو گئی ہے، تو کیا اس 100 سال کے حملے کے بعد خدا کے ایک حملے کا وقت اب تک نہیں آیا؟ نوٹ: اس حملے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام تلوار اور بندوق سے حملہ کرے، بلکہ سچی ہمدردی سب سے زیادہ تیز ہتھیار ہے۔ عیسائیت کو دلائل سے پست کرو مگر نیک نیتی اور نوئے انسان کی محبت سے، اور اس وقت خدا کی غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ خون ریزیوں اور لڑائیوں کی بنیاد ڈالے، بلکہ خدا اس وقت فقط یہ چاہتا ہے کہ انسان کی نسل پر رحم کر کے اپنے کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ اور اپنے قوی دلائل اور اپنی قدرت نمائی کے زور بازو سے شرک اور مخلوق پرستی سے ان کو نجات دے۔ منہ: اور ہر ایک گھر میں نصرانیت داخل ہو گئی ہے، تو کیا اس 100 سال کے حملے کے بعد خدا کے ایک حملے کا وقت اب تک نہیں آیا؟ اور اگر آ گیا تو اب تم آپ ہی بتلاؤ کہ صلیب پر فتح پانے کے لیے یا حسب اصطلاح قدیم صلیب کی کثر کے لیے جو اس صدی پر مجدد آتا، اس کا نام کیا چاہیے تھا؟ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاثر الصلیب کا کیا نام رکھا ہے؟ کیا کاثر الصلیب کا نام مسیح موعود اور عیسیٰ بن مریم نہیں ہے؟ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ اس صدی کے سر پر بجز مسیح موعود کے کوئی اور مجدد آ سکتا؟ ہر ایک صدی کے سر پر مجدد تو آتا ہے، اور اس میں ایک حدیث موجود ہے، مگر مسیح موعود کے آنے کے لیے قرآن شریف بلند آواز سے وعدہ فرما رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ دعا کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہیں اس وقت کے فتنے سے بچاوے جبکہ خدا کے مسیح موعود کی تکفیر اور تکذیب ہوگی اور زمین پر عیسائیت کا غلبہ ہوگا، صاف لفظوں میں اس موعود کی خبر دیتی ہے۔ ایسا ہی آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون سورۃ الحجر آیت 10 صاف بتلا رہی ہے کہ جب ایک قوم پیدا ہوگی کہ اس ذکر کو دنیا سے مٹانا چاہے گی، تو اس وقت خدا آسمان سے اپنے کسی فرستادے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ منہ: